हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम क्लास थर्ड कैंटो नाइन्थ चैप्टर 18th वर्स गिवन ऑन 19th अक्टूबर 2015 इन फरीदाबाद टेंपल बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
ओम नमो भगवते इसका अनुवाद करेंगे, सब लोग साथ में दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, जो अनंत काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो प्रारब्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैं आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सामान्य पुरुष हैं, सम्मान्य पुरुष हैं। फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। ओम ज्ञान तीव्रस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यानुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करामयं ददाति स्वर्गकान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्विष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णापादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसके अंदर चर्चा हो रही है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकर्ता माने गए, इंजीनियर जिस तरह से बनाया जाता है, इंजीनियर किसी बिल्डिंग को बनाता है, तो इस सृष्टि की रचना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने करी है। इसलिए पूरा का पूरा अध्याय का नाम है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा जी किसकी स्तुति करते हैं? तो ये ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी भगवान नहीं है क्या? तो हम ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति। लेकिन जब हम शास्त्रों को टटोलते हैं और भक्तों के संग में आते हैं तो हम इस बात को जान पाते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जीवों में सर्वोपरि है, सबसे उत्तम जीव है, प्रथम जीव है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो ब्रह्मा जी जिनकी प्रार्थना करते हैं वो भगवान है। ब्रह्मा जी जीव है, हमारी आयु 100 वर्ष की है, ब्रह्मा जी की आयु थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं जिस प्रकार से इस श्लोक में आया है, द्वि परम अर्ध अधिष्णायम, जिस स्थान में वो रहते हैं 100 वर्षों की सीमा तक, कितने 100 वर्ष, तो उसका वर्णन किया गया है इसमें, बहुत सारी फिगर है, इसको पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है कि क्या लिखा है, काउंट भी करना मुश्किल है, इतना लंबा समय है इनका। लेकिन ये है कि हाँ, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर, जस्ट 12 आवर्स, हमारे यहाँ से 12 घंटे निकलते, अभी शुरू हुआ दिन, अभी 8 बजेंगे शाम के, तो 12 घंटे के समय में, 24 घंटे में से 12 घंटे में वो 14 मनु की रचना करते हैं। कितने मनु? 14। और ये 14 मनु, हर एक मनु जो है वो अपने 71 चतुर्युग में जाते हैं, 71, 71 बार चतुर्युग। और चतुर्युग का मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। तो ये सर्कल घूमता जब 71 बार, 71 टाइम्स, तब एक मनु समाप्त हो जाते हैं और फिर दूसरे मनु की सेवा आ जाती है। और ऐसे जब 14 मनु समाप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी कितने घंटे समाप्त होते हैं? 12। और फिर रात्रि 12 घंटे की। और ऐसे 30 दिन का एक महीना, ऐसे 365 दिन का एक साल, ऐसे 100 वर्ष जब गुजर जाते हैं तब फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का क्या हुआ, एक जीवन समाप्त हो गया, जिसको कहते हैं एक कल्प। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो इतने महान जीव हैं, वो भी क्या बोलते हैं, उन्होंने एक प्रेयर लिखा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, प्रार्थना है उनकी, उसमें वो कहते हैं ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ईश्वरम परम कृष्णम। तो यहाँ पर इस ब्रह्म संहिता में उन्होंने स्थापित किया कि ईश्वर तो कौन है, कृष्ण है। लेकिन उसके बाद भी अनेक लोगों को बहुत तरह का कंफ्यूजन रहता है, भक्त बनने के बाद भी, भक्त बनने से पहले भी, कि किसको पूजा करें, किसकी पूजा ना करें। जैसे अभी 9 दुर्गे आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, प्रभु जी क्या अष्टमी मना, 9 दुर्गे पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए, बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आरती प्रभुपाद जी कहते थे आजकल जो मंदिर है वो मंदिर नहीं है, बुरा मत मानिएगा, प्रभुपाद जी ने कहा शास्त्र के विज्ञाता जिन्होंने, शास्त्रों के आचार्य हैं, अपने आचरण के द्वारा पूरे विश्व को जिन्होंने बदला, वो कहते हैं कि आजकल मंदिर एक मॉल के निर्माण है, मॉल होता है ना, मार्केट, सुपरमार्केट, वहां पर डेनिम जींस भी है, नाइकी की जींस भी है, रिबॉक भी है, सारे तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसको जो पसंद उस शॉप में घुसो वहां से बाहर। ऐसे ही आजकल सनातन धर्म के नाम पर इतने प्रकार के मॉल खुले हुए हैं, जिधर जाओ उधर घुस जाओ। अगर आपको शिव जी से मतलब है तो कृष्ण भगवान के मंदिर में आने की जरूरत ही नहीं, शिव जी से मिलो, जल चढ़ाओ, लोटा और घर वापस। दुर्गा जी से मतलब है तो जोर जोर से दुर्गा मैया की जय करो, 9 दुर्गों को पूजा करो और फिर घर चले जाओ। यहाँ पे हरे कृष्ण हरे हरे, ये तो पागल है, हरे कृष्ण जपते रहते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में बहुत भ्रांत धारणाएं रहती है। लेकिन हमें बात समझनी चाहिए कि जो मॉल भी होता है उसमें डायमंड की कितनी दुकानें होती हैं? हाँ जी, हाँ, एक होती है या एक भी नहीं होती है। तो इसलिए हर एक मंदिर में आपको डायमंड मिल जाएगा, जरूरी नहीं। तो कृष्ण भक्ति, ब्रह्मा जी बता रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामि, उनका भजन मैं करता हूँ, वो आदि पुरुष है, उनसे पहले कुछ था ही नहीं। एक दिन एक आदमी जिद कर गया मेरे को, हम सेमिनार दे रहे थे डिस्कवर योर सेल्फ, और कह रहा है कि एक बार बताइए, आपने सब कुछ बताया, हम मानते हैं कि कृष्ण है, कृष्ण के माँ बाप को। मैंने कहा आदि का मतलब क्या होता है, गोविंदम आदि पुरुषम, और जीत पे अड़ गया, वो कहता है नहीं नहीं ये बताइए कृष्ण के पिताजी माताजी कहाँ से आए। अगर जब मैं कह रहा हूँ आदि पुरुषम तो फिर आप ये क्यों प्रश्न पूछ रहे, आदि मीन्स उनसे पहले कुछ नहीं था, ऐसा कैसे हो गया कुछ नहीं था। तो ये कब समझ में आएगा, जब व्यक्ति को पहली चीज होती है विश्वास। क्या चीज है? विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर भक्ति समझ में नहीं आएगी। भक्ति को समझने के लिए पहली सीढ़ी है विश्वास। जब मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं, यहाँ से अभी फरीदाबाद से शुरू हुई, वाराणसी से भी चलती है, हम भी जाते हैं उससे बैठ के कई बार, तो उसमें कोई नहीं पूछा ड्राइवर से, ड्राइवर भैया दिखाओ जरा कितने दिन हो गए तुम्हें वाराणसी से बदरपुर रोड चलाते चलाते, लाइसेंस दिखाओ, कोई नहीं पूछता। ऑटो वाले चल रहे होते हैं सराय मार्केट से, ऑटो में बैठे होते हैं, कितने पैसे लेंगे कितना नहीं लेंगे कुछ नहीं पूछते। आप पता है 10 रुपए लेगा सवारी वाला ऑटो, प्राइवेट होगा तो 50 रुपए ले लेगा, बॉर्डर छोड़ दीजिए, बैठ जाते हैं। कभी पूछते हैं लाइसेंस दिखाओ, कितनी बार चालान कटा है, कितनी बार, विश्वास।
अब बच्चा जब पहली कक्षा में पढ़ने जाता है ABCD, तो उसकी मैडम पढ़ाती है A for apple, B for ball, पूरी लाइफ उसे आज भी पूछे ना A for एरोप्लेन भी होता है, एरोबेटिक भी होता है, याद नहीं आता है। ये विश्वास उस माँ, उस गुरु माता जिस प्रथम प्ले स्कूल की टीचर के पास हम गए, उस पर इतना विश्वास था, उसने बोला A for apple, आज तक स्टाफ याद है। कभी ये नहीं बोला, उसको बोल सकता है बच्चा अरे मैंने पिछले जन्म को पढ़ा A for एरोबेटिक होता है, ये एप्पल वेपल कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। विश्वास, दिमाग खाली तब फिर विश्वास होता है व्यक्ति को। लेकिन हमें विश्वास क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में हमने इतना कुछ सुन पढ़ लिया है टेढ़ी मेढ़ी जगह से, क्या भगवान के बारे में जानने के लिए बुद्धि बची नहीं है। एक बार एक बाबा जी थे, एक घर में आकर आवाज लगाते हैं, कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, तो माता आई और कहती है कि क्या लोगे बाबा, तो कहते हैं हम लेते बाद में पहले देते हैं। ऐसे हम लोग भी जाते हैं ना इस्कॉन की तरफ से फंड रेजिंग करने, तो बोलते हैं लोग पूछते क्या लेने आए हैं, लेते नहीं, पहले कुछ देंगे आपको, प्रसाद देंगे, कथा देंगे, फिर आपकी इच्छा हो तो आप हमें रिटर्न में कुछ दे सकते हैं। तो वैसे ही उसने भी बोला कि हम पहले देते हैं, तो असली संत वही है जो मांगने से पहले कुछ दे। तो क्या देता है, हमारे पास सबसे बड़ा दान क्या है, तप कथा अमृतम तप्त जीवनम, भगवान की जो कथा है इससे बढ़कर और कुछ भी दान नहीं है। गोपी गीत में आता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में कुछ दान करना चाहता है तो उसे या तो कृष्ण कथा करने वालों को दान देना चाहिए, या फिर कृष्ण कथा के लिए दान देना चाहिए, या फिर कृष्ण कथा का दान करना चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा का दान करता है वो सबसे सर्वोपरि दान, गोपी गीत में तप कथा अमृतम तप्त जीवनम, सारे भक्तों का जीवन, जीवन ही जीवन है यही, और जो कथा है भगवान कृष्ण की। तो इस प्रकार से उसने बोला कि ठीक है पहले कथा सुनाऊंगा फिर कुछ लूंगा। अभी कथा सुनाने लगा तो बोलता है गोविंदम आदि पुरुषम, जैसे हम बोलना सुना रहे हैं अभी इस मेरे चले चल, उन्होंने कहा ये क्या सुना रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा हमारे को, ये क्या बोल रहे हो तुम, चलो दुर्गा मैया सबसे बड़ी होती है, जाओ जाओ यहां से, उसे भगा दिया। तो बोला कि अच्छा अब तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमारे घर में खीर बनी है खीर ले लो। कहता नहीं नहीं, जब आपको मुझसे कुछ नहीं लेना तो मैं भी आपसे कुछ नहीं लूंगा। तो भक्त ऐसे होना चाहिए, जब कोई देता है कृष्ण कथा तब उसके अगेंस्ट में कुछ दान ले सकता है, लेकिन कुछ देता नहीं तो उसे कुछ लेना भी नहीं चाहिए, मैं लूंगा नहीं। तो फिर वो चला जाता है, कहता है मैं कल आऊंगा और फिर कल दान दूंगा। दूसरे दिन आता है तो कहता है कि आप आज मुझे दान दीजिए, क्या बनाया, कहती है आज मैंने दोबारा से बहुत बढ़िया खीर बनाई है इलायची डाल के। कहता है ठीक है, कल जो तुमने थोड़ी बहुत कथा सुनी उसके बदले मैं सोच रहा था तो मुझे थोड़ा सा दान दे सकती हूँ, चलो मेरे कमंडल में खीर डाल दो। तो कमंडल में जब खीर डालने लगी तो देखा कि उसके अंदर कमंडल में गाय का गोबर भरा हुआ पूरा। तो कहती है अरे इसे खाली तो करो तब तो खीर डालूंगी। तो कहता है खाली करो मतलब इसी पे डाल दो, खैर अरे गोबर पे खीर डालूंगी तो क्या स्वाद आएगा, पहले गोबर हटाओ धो फिर बर्तन उसमें मैं खीर डालूंगी। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें ना तो ये जो कृष्ण कथा रूपी खीर है ये भेजे में घुसती नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले जो इधर उधर का सुना है ना भौतिक समाज का टेलीविजन से, वो गोबर यहाँ भरा हुआ मस्तिष्क के अंदर है, आदमी कहते भी हैं अरे तुम्हारे दिमाग में यह गोबर भरा हुआ है। एक्चुअली सच में वो गोबर के कारण हमें समझ नहीं आता कि कृष्ण कथा रूपी अमृत जो खीर है वो घुसती नहीं है दिमाग के अंदर। और उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, विश्वास होना। और वो विश्वास अगर हम अपने गुरु, अपने शिक्षा गुरु, अपने सीनियर वैष्णवास पर अगर हम विश्वास करें उनकी वाणी पर, क्योंकि वो शास्त्र बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे आई मे बी रॉन्ग बट वॉट आई एम स्पीकिंग इज परफेक्ट, हो सकता है मैं गलत हूँ अपूर्ण इंद्रियों का हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। क्यों, क्योंकि ये परंपरा से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे डायमंड की दुकानें कितनी होती है, एक होती है। अगर किसी को हीरा चाहिए ना, हीरा है सदा के लिए, अगर वो हीरा चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारी दुकानों पर नहीं मिलता, एक ही दुकान पर मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप जब प्रवचन देते हैं तो आप ही के शिष्य बाहर खड़े रहते हैं और प्रचार करते हैं, अंदर नहीं आते, जब आप पक्ष देते हैं स्वयं श्रील प्रभुपाद जब कथा करते हैं भक्त सुनते नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा और बाकी लोग महाराज लोग योगी तपस्वी जो सो कॉल्ड योगीज हैं अमेरिका में, वो जब लेक्चर देते हैं थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल आते हैं, लाखों लाखों लोग बोल आते हैं। यहाँ पे भी होता है भागवत कथा चलती है पंडाल में, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, कृष्णा कहाँ है मालूम नहीं, भगवान कहाँ है मालूम नहीं, बाबा जी का फोटो बहुत बड़ा है। तो वो जो बाबा जी होते हैं तो वो अपना फोटो बड़ा और कृष्ण का छोटा रखते हैं। तो उनके पंडाल में भरा भीड़ होती है, स्कूटर लाइन है, पार्किंग तक लाइन ही लाइन है, कपड़े लाइट व्हाइट कपड़े पहन के लोग खड़े हैं वहां, भीड़ ही भीड़ हो रही है वहां पर। पता नहीं भगवान कौन है, उनसे पूछो ना क्या सुना पता नहीं, मजा होता है मजे लेने तो मजा होता है। क्यों मजा आया, बस आए घर से थोड़ा सा दूर थे, थोड़ा कीर्तन सुना, बस खुश हो गए, सेवा करने को दे दिया तो खुश हो गए। कृष्ण प्राप्त नहीं होते, जो जीवन का डायमंड है हीरा, प्रभुपाद जी से बोला तो प्रभुपाद जी ने कहा आर्टिफिशियल ज्वेलरी नकली गहने जो होते हैं उसके दुकानों पे भीड़ होती है या कम भीड़ होती है? अरे जी बहुत भीड़ होती है, और उस पर भी अगर लिखा हो डिस्काउंट, डिस्काउंट है दिवाली बुनेंजा ऑफर, दशहरे पे नकली ज्वेलरी 50% छूट पे मिल रही है, भीड़ भर जाएगी, अब माताएं ऑटो भर भर के जाएंगी गांव से शहर से, 10-10 माताएं, क्यों जी बोले वहां पे फ्री की ज्वेलरी मिल रही है 50%। अब गहना इस बार पहनेंगे दिवाली के ऊपर ना, नकली गहना पहनेंगे, असली पहनने का तो जमाना चला गया है। लेकिन डायमंड की दुकान, हम द्वारका में सेवा करते हैं, और द्वारका में दिल्ली में जो द्वारका है गुजरात वाला नहीं, वहां पर एक डायमंड की दुकान है डिबियर्स डायमंड की, जाते हैं उनके पास मिलने के लिए। मैं एक दिन बैठा था, 4 घंटे प्रचार चलता रहा, डिस्कशन होता रहा, एक भी कस्टमर नहीं आता। तो मैंने पूछा आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आते, फिर इतनी आलीशान दुकान कैसे बना लिया आपने? कह रहा देखिए जी अगर महीने में एक कस्टमर आ गया ना पूरे महीने दुकान चल जाती है हमारी। सोचिए पूरे महीने में कितना कस्टमर, एक। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लगे पड़े हैं भीड़ भीड़, आ जाओ, 2 लड़के बाहर खड़े होते हैं रोक रोक के ऑटो में, आ जाओ। तो ऐसे ही ये कौन संस्था, श्रील प्रभुपाद ने कहा यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, डायमंड हीरा, और वो है सदा के लिए, मृत्यु के जीवन जीतने के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसी कहती है ना एक्चुअली, वो हमने बोला प्रभुपाद जी ने बोला, ये जीवन के साथ भी है कृष्ण और जीवन के बाद भी है कृष्ण। तो ये कौन प्रदान करता है, सिर्फ कृष्ण भावनामृत संस्था, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस कौन इस चीज को प्रदान करती है, पूरे विश्व में कृष्ण को प्रदान करती है, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं आप गरीबों को खाना खिलाओ, आप ये करो, आप स्कूल खोलो, आप वृद्ध आश्रम बनाओ, वो जानते नहीं है कि आज आपने किसी बीमार आदमी को ठीक कर दिया और उसका उसको भेज दिया किसी आश्रम में योगा सिखाने के लिए, कपालभाति करो जी कपालभाति, अभी क्या हुआ, अरे पहले दारू पीता था ना, शराब पीता था तो यहाँ अटक जाती थी, जब से कपालभाति शुरू किया पूरी अंदर जाती है। तो उसको आपने गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे दी, एक्चुअली मांसाहार करने के लिए प्रेरणा दे दी। तो आदमी अस्वस्थ है और स्वस्थ होना चाह रहा है योगा करके, किस लिए, ताकि वो दुष्करणाम वाले कार्यों को कर सके। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, लोग सोचते हैं हम एक सेमिनार करते हैं योगा फॉर मॉडर्न एज, इस नए जमाने के लिए योगा, लोग समझते योगा, तो मैं भी उस दिन जिस दिन पहला दिन सेशन होता कहता हूँ कुर्सियां हटा लीजिए सब लोग खड़े हो जाइए, लंबी लंबी सांस ले, सोचते सच में योगा करें, फिर कहता हूँ बैठ से, फिर भक्ति योगा सिखाते हैं। भक्ति योगा मतलब भगवान से जुड़ना, योग मतलब जुड़ना, तो जो भी चीज भगवान से जोड़ पाए वो है भक्ति योगा। ये थोड़ी है शरीर की क्रिया कराए और कृष्ण कौन मालूम नहीं है, तो वो एक्चुअली हमें जीवन के साथ में नहीं रहने वाला, और जीवन के साथ अगर चलो स्वस्थ रह भी लिए, जीवन के बाद में तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो काम किया उसका फल भुगतना पड़ता है। हम एक आचार्य बता रहे थे स्वस्थ रहने का असली अर्थ क्या है, स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्थ, स्वयं कौन है, हम कौन है, आत्मा या शरीर, आत्मा मानते तो सब है लेकिन जानते नहीं है। जिस दिन आत्मा में स्थित हो गया, स्वस्थ स्वयं में स्थित होना, जिस दिन आप अपने में स्थित हो गए ना कि आई एम अ सोल, बस आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, उस दिन आप देखिए कोई गाली दे, डांटे, फटकारे, धक्का दे दे, निकाल दे बाहर, बुरा भला बोले, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे आप जिसको बोल रहे हैं ना वो शरीर है, मैं कौन हूं, सच्चित आनंद आत्मा, क्योंकि भगवान कौन है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, वो सच्चित आनंद के विग्रह है, और हम कौन है, माम एव अंशो जीव लोका जीव भूत सनातन, उनके अंश है तो हम भी सच्चित आनंद। अब सच्चित आनंद आदमी कैसे दुखी हो सकता है, आदमी बोलते हैं ना आज बड़ा अपसेट हूं, अपसेट क्यों है, क्योंकि वो अपने को शरीर मान रहा है, जो उसके साथ सिचुएशन आई वो शरीर के साथ आई है, वो कौन है, सच्चित आनंद विग्रह। अभी आनंद का जो स्वरूप है वो व्यक्ति निरानंद कैसे हो जाएगा, अपसेट कैसे हो जाएगा, वो इसी के कारण है क्योंकि वो जान नहीं रहा कि संसार के परम भगवान कौन है, कृष्ण, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, और हम कौन है, उनके अंश, इसके कारण हम भी सदा सत, मतलब हम कभी मरते नहीं है, अमर रहने वाले, चित सदा ज्ञानवान रहने वाले हैं, और आनंद सदा आनंद में रहने वाले हैं, उस दिन जिस दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो सब लोग स्वस्थ बनना चाहते हैं कि नहीं? तो स्वस्थ बनने के लिए हमें जीवन में कलयुग में एक ही चीज बताई गई, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पर, जितने प्रगाढ़ता से भगवान के नामों को पकड़ेंगे उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं आप लोग पागल हैं क्या, सड़क पर नाचते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे इससे क्या होता है? वे रोग है, रोग थोड़ी ठीक हो हरे कृष्णा करने से, उससे पूछो हरे कृष्णा नहीं करने से ठीक हो जाएगा? एक लोग बोल रहे थे गीता बांट रहे थे, कहते हैं आप लोग गीता देते हैं ना इससे महाभारत होता है घर में, महाभारत होता है हमारे घर में जब आप लोग गीता प्रदान करते हैं, इसमें ये महाभारत के युद्ध में लाया गया, इसको लाने से घर में महाभारत होता है। तो मैंने प्रश्न पूछा आपके घर में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ? कह रहे होता है जी, वो तो प्राय होता है घर में झगड़ा। मैं कहा तो आपके घर तो अभी गीता नहीं है फिर भी महाभारत हो रहा है, तो महाभारत आपने गीता को ऐसा क्यों सोच लिया? गीता घर में रखेंगे भगवत गीता तो महाभारत होगा, इसके बिना भी तो दुनिया में डाइवोर्स हो रहे हैं, हर ये आएगी ना तो डाइवोर्स रुक जाएगा आपका, आपके घर में महाभारत खत्म होता है। अच्छा जी, हमें तो मालूम ही नहीं था। कह रहे इसीलिए तो हमें भेजा भगवान ने कि हम आपको बताएं। तो फिर धीरे धीरे लोगों को एक चीज समझ में आती है। और लोग प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बोला तो हम कैसे इस बात को माने? तो मैं उस दिन एक एग्जाम्पल दे रहा था, ऐसे प्राय एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं कुछ उदाहरण, तो उस उदाहरण से मैं सोच रहा था कि एक बंद कमरा है, पूरा कमरा बंद है और उसके अंदर कोई दिख नहीं रहा बैठा हुआ, और जब पहला व्यक्ति एंटर करता है, मान लीजिए सुशांत प्रभु एंटर करते हैं इस टेम्पल हॉल में सुबह 4 बजे मंगला आरती में, अभी ऑल्टर भी बंद है, 4:30 पर्दा खुलेगा, और वो अंदर आते हैं और बटन ऑन करते हैं लाइट का, लाइट का बटन ऑन करते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही ओम ओम तत्व प्रभु जी हमारे बैठे हुए हैं ऑलरेडी वहां पर जप कर रहे हैं। तो अब पूछा जाए, बाकी लोग बाद में आए 4:15, 4:20, 4:30 जो लोग एंट्री किए और पूछे सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, तो कौन बता सकता है सबसे पहले कौन आया था? हाँ जी, कौन बताएगा? सुशांत लोग बता सकते हैं, या फिर ये खुद बता सकते हैं जो सबसे पहले आए थे? दो लोग ही हैं जो सबसे पहले आए थे वो बता सकते हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो सबसे पहले आए, बोलते हैं ना सृष्टि रचना किसने करी, किसी से भी पूछो, 8 साल 10 साल का बच्चा भी होगा ना उसको रटवा देते माँ बाप ब्रह्मा जी ने बनाई सृष्टि, ब्रह्मा जी तो प्रथम जी ब्रह्मा जी वो आया। तो अब जब वो आए कमल रूपी नाल में, ऊपर एक फोटो बना हुआ है यहाँ पर, और नाल में से ब्रह्मा जी सबसे पहले पेट में से प्रकट हो रहे हैं, और जब ब्रह्मा जी कमल नाल पे प्रकट होते हैं तो वो सोचते हैं मैं कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया। तो उनके ज्ञान की बत्ती जब जलती है तपस्या करते हैं, ता और प नाम के दो अक्षर सुनाई देते हैं और तपस्या करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ से आया, गोविंद से आया, कृष्ण से आया। तो फिर वो भजन गाते हैं क्या, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुष है उनका मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो पहले जीव है उन पर आपको फेथ करना पड़ेगा, अरे उनको भी नहीं मानते हम, तो फिर कृष्ण में फेथ करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मत चित, भगवान बोलते हैं मत पर करम नान्यत किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, मां मे वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन, हे अर्जुन इस संसार को बीज प्रदान करने वाला सारे सारे लोग जो है वो मेरे अंश हैं, अहम बीज प्रधा पिता, सबको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो वो भगवान अलग अलग गीता में पुकार पुकार के बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अब जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, कह रहे क्या बिगाड़ लो नहीं बिगाड़ सकते भाई, नहीं मानना नहीं मानना उस व्यक्ति को। तो इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत नीचे हैं, हम जो ब्रह्मा जी से नीचे हैं उनके लिए अनिवार्य है कि उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। तो किसको नमस्कार करें, कृष्ण को, मन मना भग मत भक्तो मदिया जी माम नमस्कारो, भगवान ने भी कहा मेरा नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरी प्रार्थना करो, हाँ मेरे भक्त बनो मेरा, मैं तो फिर क्या होगा तुम जीवन में मेरे धाम को प्रवेश कर पाओगे। ये 4 कार्य भगवान ने 2 बार बताया, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। एक रोम जब टूटता है पता कब टूटता है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल निकल जाते हैं। अभी आपने शुरुआत में सुना कि ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े होते हैं। तब एक टूट जाता है, तब उनका एक कल्प में एक बाल टूटता है, और जब सारे बाल टूट जाते हैं शरीर के रोम, तब फिर उनका जीवन समाप्त होता है। उनके जीवन में कई ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा जी भी अनेक होते हैं क्या? हाँ, ब्रह्मा भी अनेक होते हैं। एक बार हमारी जो ये रचना है ब्रह्मांड की, इसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चार मुख वाले, तो ऐसे ब्रह्मा जी एक बार किसी कंफ्यूजन के कारण, जैसे हमारे भी टेंपल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा पहुंच जाते हैं गोपेश्वर प्रभु जी के पास में। प्रभु जी, प्रभु जी, पता है मंदिर में क्या चल रहा है? कह रहे हाँ पता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमें मालूम है। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान के पास ब्रह्मा जी अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ब्रह्मा है। तो जो हमारे इसके ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के पहुंच गए भगवान के पास, घंटी बजाई, टिंग टॉक, जो भी किया होगा, तो फिर उन्होंने जाकर बोला, हे कृष्णा अब बाहर निकलो जल्दी, पता है कितना प्रॉब्लम है। तो कृष्ण के ऑलरेडी अंदर मीटिंग चल रही थी, ब्रह्मा मीटिंग, सारे ब्रह्मा, जैसे हमारे टेंपल प्रेसिडेंट मीटिंग होती है तो सारे मंदिरों के टेंपल प्रेसिडेंट आते हैं, या फिर टेंपल मैनेजमेंट मीटिंग, तो मंदिर के फुल टाइम डिवोटीज की मीटिंग होती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा मीटिंग चल रहा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जाकर पूछो कौन सा ब्रह्मा है। तो दो गार्ड आए बाहर पूछने के लिए, ब्रह्मा जी कृष्ण पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। कह रहे कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा है, ब्रह्मा एक जीव है बस एक, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो अंदर गए, बोले, बोल रहा है मैं एक ही तो हूँ, एक जीव, मुझे भूल गए क्या, मैं पहला आदमी संसार का जीव। तो उन्होंने कहा अच्छा जाकर पूछो कितने मुंह वाला ब्रह्मा है, कितने मुंह वाला है। बाहर आए, बोले कितने मुंह वाले हो। कह रहे चार मुंह वाला हूं मैं। कह रहे चार मुंह वाले, अच्छा ठीक है। फिर अंदर गए, बोले चार मुंह वाले ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुलाओ। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले क्या चल रहा है इनके मैनेजमेंट में, नीचे के सिक्योरिटी के लोग ठीक नहीं है, क्या सब बोलते हैं चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, और क्या 80 मुंह वाला भी ब्रह्मा होता है क्या कोई। अंदर अगर देखे तो हैरान, हजार हजार मुंह के ब्रह्मा, हजार मुंह का ब्रह्मा, 40 मुंह का ब्रह्मा, 80 मुंह का ब्रह्मा, 2 मुख का, 1 मुख का भी है। सबकी मीटिंग चल रही है, सबसे लेट वही आए थे चार लोग पहले। तब उन्होंने देखा तब चुप होकर बैठ गए। तो कृष्ण भगवान ने अपनी भगवती टेढ़ी करके पूछा कि ब्रह्मा जी कैसा लग रहा है, सब नष्ट हो गया, हल्का सारा नष्ट हो गया, मुझे लगता था मैं ही हूँ सबसे सर्वोपरि, लेकिन अब समझ में आया कौन, गोविंद आदि पुरुषम तम बजा में आपका मैं भजन करता हूँ। ऐसे जीव है तो ब्रह्मा जी। तो उनका जब 100 वर्ष समाप्त होते हैं, तब रोमेश ऋषि का एक रोम गिरता है, एक रोम का गिरता है। तो इंद्रदेव जो स्वर्ग लोक के, उन्होंने एक बार देखा कि ऐसे रोमेश ऋषि अपने सर पर घास की गठरी रखते हैं, घास होती है ना काटने वाली, वो गठरी अपने सिर पे रखते हैं और हाथ में जप माला लेते हैं, ऐसी माला, और माला लेकर क्या बोलते हैं, अरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ऐसे हैं रोमेश ऋषि और जप करते हैं। तो इंद्र ने पूछा, अरे इतनी क्या जल्दी है आप ये जप करने जा रहे हो, धूप पड़ रही है, उस धूप से बचने के लिए आपने सिर पे गठरी रख दी कि छाव पड़ जाएगी, घर बना लो, कुटिया बना लो, उसमें रह के भजन करो आराम से। कह रहे जी कल का क्या भरोसा, क्या बोले कल का क्या भरोसा, मेरी तो उम्र बड़ी छोटी सी है, बड़ी कम आयु है मेरे तो जीवन में। तो उन्होंने पूछा कितनी आयु है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष गुजर जाते हैं तब मेरे शरीर का एक रोंगटा गिरता है, जब सारे शरीर के रोंगटे गिर जाएंगे तब फिर मेरा शरीर समाप्त होता है। तो आप सोचिए जरा, इतना जिसका जीवन है वो व्यक्ति क्या कह रहा है, अभी जीवन में क्या बचा है, बस भजन कर लो, मकान बनाने में लगा रहा ना, तो पता चला जब छूट जाएगा। और हम जिनकी टोटल 100 वर्ष आयु भी नहीं होती आजकल, वो लगे हैं 2 रूम का फ्लैट, 3 रूम का फ्लैट, 1 बीपी टीपी, 1 टीपी बीपी, सब जगह मकान, एक बदरपुर बॉर्डर में एक, हमारा हमने एक झाड़ क्षेत्री में खरीद लिया प्लॉट, लगे हुए हैं मकान बनाने में, और जब करने के लिए प्रभु जी टाइम ही नहीं होता, प्रॉपर्टी का काम इतना बढ़ गया आजकल, इतना ढीला चल रहा है, क्या करें, बिजनेस फैल गया है, लोगों के फोन आते हैं, रिश्तेदार ये वो, जब जब के लिए टाइम नहीं, जब ठप पड़ा है बाकी सारा काम चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इस जीवन का। चूहा जो बिल बनाता है, चूहा पता है क्या बिल बनाता है, सांप का बिल बोलते हैं ना, ये सांप का बिल है, वो सांप का बिल नहीं होता, सांप तो साइड में बैठता है पेड़ के नीचे आराम से, और चूहा बिल बनाता है, एक साइड से घुसता है और चूहा एक्सपर्ट है इंजीनियरिंग में। जानवरों की बड़ी चर्चा प्रभुपाद जी ने करी है हर जगह एग्जांपल देने में, कुत्ता बिल्ली बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, सारे जानवरों पर कृपा करते हैं। चूहा, चूहा जब अंदर घुसता है तो वो बेडरूम बनाता है, ड्राइंग रूम बनाता है। कभी आप चूहे का बिल देखें या सांप का बिल देखें ना, तो आपको पता चलेगा उसने अंदर कंपार्टमेंट बनाए होते हैं। यहाँ से छीलेगा पहले, ये मेरा रूम बेडरूम, यहाँ मैं चूहा के साथ सोऊंगा, ये मेरा ड्राइंग रूम, यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, डाइनिंग टेबल लगाऊंगा, ये रखूंगा, पत्थर लाला के टुकड़े लाला के रखता है अंदर, और चार पांच कमरे बनाता है एक बिल के अंदर, और फिर इधर से बाहर निकलता है। तो बाहर पता क्यों निकलता है, जाऊंगा खाना लाऊंगा उसको अंदर रखूंगा अरेंजमेंट करने के लिए। तो जब पूरा बना रहा होता है ना, तो सांप कुछ नहीं कहता, कह रहा बना ले बेटा आराम से बना ले फुल टाइम आराम से। और उसके बाद जब वो बना के इस पार से इस पार निकलता है ना, तो फिर सांप यहाँ बैठा होता है उसका करके भक्षण कर लेता है। जब भक्षण कर लेता है तो फिर बस अब क्या है, अब उसके पास पेट भर जाता है ना, तब सांप को खाने के बाद क्या होता है, आदमी कहते हैं ना प्रसाद के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, तो खाने का सोना सोएगा कहाँ, बस घुस गए चूहे के बिल में, आराम से उसके फोर रूम बेडरूम फ्लैट में जाकर सो जाता है सांप। और लोग सोचते हैं सांप का बिल है, सांप का बिल, वो सांप का बिल नहीं होता, वो चूहे बनाता है बिल और सांप उसमें रहता है। ऐसे ही हम सब कौन है, चूहे के समान। तो बताया अपने भागवतम में कि हम चूहे के समान है, और वो चूहा आपकी तरह हम घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। अभी दिवाली आ रही है, आप देखिए एसी पुराना हो गया, डिस्काउंट में बदल लेते हैं, टेबल बदल लेते हैं, ये बदल लेते हैं। अरे हृदय बदलने को कोई तैयार नहीं है। दशहरा आएगा तो रावण को जलाने जाते हैं लोग, लेकिन ये नहीं सोचते अपने हृदय में ये दशानन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, अहंकार का, इस रावण को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हरिनाम जप करना। एक बार वो व्यक्ति पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि हम जप कर रहे हैं तो हम साधु बने नहीं बने। कई लोग मजाक में बोलते हैं और स्वामी जी साधु जी ऐसे करके लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या हम सच में साधु हैं? तो उसके लिए हम बताते हैं, हरिनाम चिंतामणि कहती है, अन्य देव अन्य शास्त्र ना करी निंदन, ना मेरा आश्रय लय शुद्ध साधु जन। साधु जन कौन है? उसने बताया अन्य देव, अन्य देवताओं को रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी बुराई नहीं करनी है। जैसे हम दुर्गा जी की पूजा नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कल को वहां से निकले दुर्गा जी आई बड़ी, अब हम कृष्ण तक पहुंच रहे, हम दुर्गा जी को हरे कृष्णा नहीं बोलते। अरे वैष्णव है ना, वैष्णव है, शिव जी है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, उनके वहां से निकले मंदिर के आगे से दंडवत कर दे, क्या बोले, वांछा कल पदरो भश्य कृपा सिंधु बेवजा पतिता नाम पावने भी वैष्णव भी, ये नहीं होना चाहिए। शिव जी तुम तो कृष्ण भगवान से मदद मांगते हो, हमने बहुत कथाएं सुनी, कृष्ण भगवान बड़े तुम पीछे, ये नहीं। अन्य देव और अन्य शास्त्र, अन्य शास्त्र मतलब अब हम गीता पढ़ते हैं तो वेद वेद कुछ नहीं होते, अरे वेद होते हैं, वेदों का सार है भगवद गीता, हम वेदांत सूत्र, हमें उनके रिस्पेक्ट, हमें उन्हें पढ़ना नहीं है, हमें देवताओं की वर्षिप नहीं करनी है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है अन्य शास्त्रों को या अन्य देवों को। अन्य देव अन्य शास्त्र ना करी निंदन, उनका निंदा नहीं करता, और क्या कहता है, नामेर आश्रय लय शुद्ध साधु जन, नाम का आश्रय लेता है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम कृष्ण भगवान की जय, पंचपद गौर का श्री भगवान की जय। तो फिर वो व्यक्ति जो नाम का आश्रय लेता है, हरि नाम का आश्रय लेता है, क्या बन जाता है, शुद्ध होता है और वो साधु कहलाता है। आगे बताते हैं, साधु बन रहे क्या, वैष्णव है तो कौन है वैष्णव, कैसे पता चलेगा, चेक कैसे करें, वैष्णव कौन वैष्णव है? तो कोई लोग बोलते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं वैष्णव है, चाहे शाम को जाकर चार पांच लोग थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है, ठाकुर कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है जिस व्यक्ति की नाम में रति है, कई लोगों का नाम होता है रति मंजरी, रति कृष्ण, रति कृष्ण ऐसे करके नाम होते माताओं में दिए जाते दीक्षा में, रति मतलब उस व्यक्ति से अटैचमेंट, तो किससे अटैचमेंट, यार यते नाम रति, जिस व्यक्ति की नाम में रति है भगवान के नाम में, चलते फिरते बैठते जिह्वा से बस एक ही चीज निकलती है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस जिसकी नाम में रति है वो कौन बन जाएगा, वैष्णव बन जाएगा। अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं, जैसे मंगला आरती में सोए बोलते हैं, मुझे कई बार उनको हंसी भी आती है उस लिखी हुई लेटर में, जो अपने आप को वैष्णव समझता हो, हम तो पहले दिन से समझते हैं। लेकिन कोई वैष्णव है नहीं एक्चुअली, नाम में रति किसकी है, जिसकी नाम में रति नहीं वो वैष्णव नहीं है, समझता रहे चाहे पूरा जीवन वो अपने आप को वैष्णव। तो बताते हैं कि नाम में रुचि ना आने के तीन कारणों के कारण नाम में रुचि नहीं आती है। तो हिजोलीनेस महानिधि स्वामी महाराज ने एक बुक लिखी थी नाम अपराध, और भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि, और भी ऐसी आर्ट ऑफ चैंटिंग ऐसी अनेकों शास्त्र बुक्स में पता चलता है कि तीन प्रकार के जाप के कारण हमारे मन में रुचि नहीं होती है। पहले प्रकार का जाप होता है आलस्य पूर्ण जाप, जिसको लय बोलते हैं, लय के कारण, आलस्य के कारण हमारी भक्ति में मन नहीं रहता। क्यों आलस का कैसे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सुबह से रात हो गई काम करते करते, सुबह से रात हो गई काम करते करते, अब नाम लूं या ना लूं, क्योंकि आज लेक्चर में बोल रहे थे नाम में रति होनी चाहिए, तो बहुत रति है मेरी, अभी 10 बज गए रात के, तो अभी क्या करूं, सो जाऊं या नहीं। तो मन उसका चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, मन तो चंचल है, वो बोलेगा सो जा सो जा, कल 24 कर लियो, कल 32 कर लियो, 64 कर लियो, हाँ हाँ कितना अच्छा बता रहा है, कल सुबह 4 बजे से उठ के 10 बजे तक 64 वाला करूंगा, बस ध्यान पूर्वक, बस सुबह लाख लोग खुलेगा 8 बजे और भी 64। तो ये जो है आलस, कल सुबह कर लूंगा बाद में कर लूंगा, ये एक्चुअली जब ट्रीटमेंट करते हैं हरि नाम के साथ, हम भी करते हैं, हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, हम दो वाला रहेंगे चलो बाद में, ये आलस के कारण धीरे धीरे एक दिन 16 के 16 वाला रात में ही शुरू होती है, 10 बजे व्यक्ति समाधि में बैठता है, अब दब करूंगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, एक्चुअली इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त करना चाहिए, हम पूरा करना चाहिए। दूसरे प्रकार का जब उदासीन, उदासीनता बताया गया है, जिसमें उदासीनता जब कैसा होता है, दो तो सभी होंगे, मैं तो हूं, उदासीनता जब कैसा है कि जब जब समाप्त होता है पूरा होता है तो बड़ी खुशी मिलती है, आज का 16 हो गया, ये जिनके साथ हो रहा है वो उदासीन जब करते हैं उदासीनता, क्योंकि नाम में रति नहीं है, वो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है क्या कि बस मेरा जप जैसे भी करके पूरा हो जाए। कुछ लोग तो बोलते भी हैं प्रभु जी कितना रह गया, 2 माला और रहे फिर खत्म, नाम ही खत्म हो जाएगा जीवन से, खत्म माला खत्म, 2 रह गए हैं, तो बोलना चाहिए 2 के बाद मेरी नाम आज का पूरा हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं नाम खत्म हो जाएगा, तो लोग बोलते माला खत्म होगी कि नहीं, सामने वाला बोलते बस 2 रह गए यार, 2 रह गए। तो ये उदासीन जप है एक्चुअली, नाम समाप्त होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं दुख होना चाहिए, बस सुने दी मेरे गुरुदेव, ओहो कल कब आएगा जब मैं दोबारा सुना करूंगा, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, जिसके साथ होगा समझ लो उसकी नाम में लग गया, वो शुद्ध वैष्णव बनने की प्रक्रिया में लग गया है। और तीसरा विक्षेप, हमारा मन लगता नहीं है, बार बार मोबाइल आप देखेंगे मंगला आरती के बाद जब जप करने बैठते हैं तो कृष्ण का चिंतन करें ना करें, एक बार ये चिंतन होता है मोबाइल चेक कर लो कौन कौन से मैसेज तो गया है, 4 बजे भी कुछ भक्त भेजते हैं, अब हमारा व्हाट्सएप अकाउंट मैंने बनाया था प्रीचिंग करने के लिए तो बंद कर दिया उसको, क्यों हम लोग 4 बजे भी फोटो भेजते हैं, ओरिजिनल कृष्णा के सामने फोटो भेज रहे हैं, नीचे लिख के हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग, अरे वो मॉर्निंग गुड कैसे होगी जब कृष्ण ही नहीं है जीवन में, नाम नहीं है जीवन में, कहीं काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान आते हैं, अरे फोटो या व्हाट्सएप के रूप में नहीं आते, तो मैंने डिलीट कर दिया, और फेसबुक तो कभी बनाया ही नहीं था, मैंने इतने विक्षेपों से जितना दूर रहो उतना नाम अच्छा होता है, और जब से बंद किया ना बड़ी तसल्ली शांति है, 5-10 बजे तक तो कोई मैसेज ही नहीं आता, टेक्स्ट मैसेज तो लोग भेजते नहीं, बड़ी मुश्किल होती है भेजने में। तो इस प्रकार से मोबाइल बीच बीच में चेक करते रहना जब करते वक्त कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया, शायद कृष्ण भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, मेरे नाम जब को देख के लिखा हो आज ही बोलो धाम आ जाओ, मैसेज भेजाओ, कुछ ऐसे चेक करते रहते हैं, तो वो जो ये कर रहे हैं एक्चुअली विक्षेप के कारण उनका जप नहीं होता और धीरे धीरे नाम से रुचि समाप्त हो जाती है। तो आचार्यगण इतने दयालु होते हैं, महादयालु, जैसे चैतन्य महाप्रभु महावदना है, उन्होंने इनको दूर करने के उदाहरण तरीके भी बताए हैं, लय जो है उसको दूर करने का तरीका बताया कि अगर आप आलस को जीवन में दूर करना चाहते हैं तो आप प्रजल्पा बंद कर दीजिए, प्रजल्पा मीन्स भगवान की कथा के अलावा कोई और चर्चा नहीं करेंगे जीवन में, हम मंदिर के बाहर खड़े होकर हम काफी देर देर चर्चा कर लेते हैं, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं चलो थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है थोड़ी बहुत देर ठीक है, लेकिन बहुत देर रोज जो लोग मिलते हैं रोज मंदिर में आते हैं, अरे आपको मंगल आरती हो गई, जब हो गए चलो आओ दो घंटे बैठते हैं, उनका आलस जीवन में आता है। कहते हैं आत्मना मुख दोषेण बध्यन्ति सुख सारिकाः, बका तत्र न बध्यन्ति मौनं सर्व साधनम्। बताया गया है आत्मना मुखा दोषेण, इस आत्मा का सबसे बड़ा दोष है भगवान ने हमारे मुंह में ये लगा दिया, जीवा और ओठ, और इससे क्या करते हैं बध्यन्ति सुख सारिका, तोता और सारिका एक बर्ड होती है चिड़िया, वो क्या करती है जोर जोर से जब बोलती है ना कू या फिर शुक कू बोलते रहते हैं, तो फिर जो बड़े जानवर होते हैं ना सांप आदि चील, उनको दिखता है कि ये बैठे हैं बड़ा बोल रहे हैं ना, चलो इनको मैं खा लेता हूँ, तो ऐसे वो तभी आते हैं जब हम जोर जोर से बोलते हैं। एक बार तो एक चिड़िया का बच्चा ऊपर से गिरा और नीचे आकर गिरा जमीन पे, तो नीचे गिरा तो एक गाय जा रही थी, उस गाय ने गोबर कर दिया और गोबर के अंदर दब गया पूरा, और इधर एक सांप बैठा था और भूखा था, बड़ी देर से सोच रहा था क्या खाऊं क्या खाऊं, कुछ मिल नहीं रहा ब्रेकफास्ट में, तो इतनी देर में वो जो अंदर पड़ी थी ना थोड़ी सी क्या गोबर गिरा उसके सिर पे, वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, आवाज करने लगी ची 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 ची, सांप ने अपनी पूंछ से गोबर हटाया अंदर से ची ची को फिनिश कर दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, थोड़ी सी परेशानी आएगी, जानते हैं जो व्यक्ति जीवन में हरि नाम लेता है उसके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आती है, और आती भी है तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस उत्साह निश्चय धैर्य रखिए, ये परेशानी आई है चली जाएगी, रेड लाइट हमेशा रेड लाइट नहीं रहती है वो ग्रीन लाइट बनती है, सूरज हमेशा रहता नहीं है, रात्रि में चंद्रमा भी आता है, रात के बाद दिन आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, परेशानी के बाद परेशानी जाएगी भी, लेकिन हमें धैर्य नहीं होता, इसके कारण हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, माला को छोड़ के क्या बोलते हैं ची 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 प्रजल्पा करते हैं, आज पता है मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, और फिर क्या होता है अब मृत्यु रूपी सर्प हमेशा इंतजार करता है, या फिर अपराध रूपी सर्प वो हमें भक्षण कर लेता है, टेस्टी फूड। बका पत्र ना बध्यन्ते, लेकिन जो बका है, बका मतलब एक बकासुर आया था राक्षस, बकासुर नहीं बका, वो जो एक कान पर खड़ा रहता है वो शोर नहीं करता, चुपचाप समाधि में रहता है, वो कहता है क्या मौन सर्वर्थ साधनम, जब परेशानी आए कोई आपसे बुरा भला बोले, जब आपको समझ में नहीं आए जीवन में करूं क्या, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है मौनम सर्वर्थ साधनम, चुप रहो, और चुप रहने से धीरे धीरे ये लय रूपी जो परेशानी भक्ति में आती है चली जाती है। उदासीन जग के लिए बताते हैं आचार्यगण कि कंदरा हो या फिर 20 फुट गहरी जमीन खोदकर रूप गोस्वामी और अनेकों आप देखेंगे जाते हैं जब गोवर्धन परिक्रमा में, तो राघव पंडित की एक गुफा आती है अंदर, तो कंदराओं में जाकर गुफाओं में जाकर जप करते थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी, नौकरी पेशे आदमी है, घर बार छोड़कर कैसे गुफा में जाएंगे, घर वाले डंडा लेके आएंगे, बाबा जी बनने का बड़ा शौक है, तो इसलिए हमें अपना उदासीन जप अगर सुधारना है तो उसके लिए बताते हैं एक अंधेरे कमरे में अपने घर में आप बंद कर लें अपना कमरा और जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए भगवान के नाम का, क्या बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, या फिर मंदिर में भक्तों के संग में आकर जप करें या फिर तुलसी महारानी के सामने बैठ कर जप करना चाहिए। और विक्षेप जो हमारे जीवन में आता है, अब बार बार मोबाइल देखने की इच्छा मैसेज देखने की इच्छा अगर इसे हटाना चाहते हैं तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए कि हमको एकादशी जैसे जो दिन आते हैं स्पेशल फेस्टिवल्स उसमें ज्यादा मालाओं का जप करना चाहिए। वृंदावन कार्तिक यात्रा भी जा रही है 30, 31 और 1, उस 3 दिन की यात्रा में हम प्रजल्पा कम और जप ज्यादा करेंगे, सारे लोग मिलते हैं ऑल इंडिया के भक्त मिलेंगे 5,000, तो हरिबोल बहुत होता है, प्रसादम गोल भी बहुत होता है, लेकिन जप 16 भी पूरा नहीं हो पाता। अच्छा, तो अगर देखें तो हमें ज्यादा मालाओं का जप करेंगे तो हमारा विक्षेप जो है वो समाप्त रहेगा। एक बार बता रहे थे दो भक्त थे, भक्त क्या थे, दो बच्चे थे एक्चुअली, जैसे भक्तों के घर में बच्चे होते हैं ना, तो एक बच्चे ने 100 गुलाब जामुन बनाए, दशहरे पे मेले लगते हैं ना, दशहरा फेस्टिवल, इसलिए मेरे को याद आती है कुछ कथाएं, दशहरे पे उन्होंने एक कटोरी बनाई उसमें 100 गुलाब जामुन डाले और एक कटोरी में एक प्लेट में 100 जलेबी डाली, तो दोनों दोस्तों ने सोचा हम जाएंगे और दशहरे में जाकर क्या करेंगे इनको बेचेंगे, तो उन्होंने बोला कि कोई बिजनेस लगाने से पहले जेब में कुछ होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो उन्होंने कहा, एक दोस्त बोला मेरे पास तो 1 रुपया है, तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे पास क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एकदम थन थन गोपाल है, कुछ नहीं है, जेब खाली है, कर कोई बात नहीं, मेरे से लोन ले लियो, 1 रुपए में लोन दे रहा है। और दोनों बच्चे जाते हैं दशहरे में मेले में बैठ जाते हैं, अपनी अपनी स्टॉल लगा के 100 गुलाब जामुन 100 जलेबी और रेट फिक्स करते हैं, बोर्ड लगाते हैं 1 रुपी पर पीस, 1 रुपया एक पीस का मिलेगा। अब शुरू कर देते आइए 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 आइए, 12 बज जाते हैं, कोई नहीं आता। तो सोचते हैं अरे बिजनेस तो ठप हो गया, कोई आया नहीं, सब रावण देखने में बिजी है, कोई खा नहीं रहा है हमारा गुलाब जामुन जलेबी। तो दूसरा कहता है जिसके पास 1 रुपया था, तो चिंता मत कर तेरा बिजनेस मैं चलाऊंगा दोस्त, चिंता मत कर। तो उसे वो 1 रुपया देते हैं और कहते हैं चल 1 जलेबी मुझे दे दे। तो वो 1 रुपया लेता है, अपने पास रखता है, जलेबी खाता है, कह रहा तेरा बिजनेस तो शुरू कर दिया, कह रहे हाँ तू चिंता मत कर तेरा तो मैं भी शुरू करूंगा। तो 1 रुपया अब इसने कमा लिया था, अब इसने कहा ये ले 1 रुपया, 1 गुलाब जामुन दे दे। तो उसने गुलाब जामुन दे दिया, अभी बिजनेस वापस 1 रुपया लौट गया, उसके बाद रिटर्न अमाउंट। अब इधर फिर खाली है ठंड गोपाल, 1 जलेबी चली गई, 99 बाकी है। अब फिर बैठ गए आइए 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 आइए, 2:30 बज गए, कोई नहीं। फिर बोला तू चिंता मत कर, भूख लगी है इधर पेट में, चूहे उबल रहे हैं कूद रहे हैं। फिर 1 रुपया दिया, फिर जलेबी खाई उसने, फिर 1 रुपया दिया गुलाब जामुन खाया। फिर ऐसे करते करते रात्रि हो गई, 1-1 रुपया घूमते घूमते 1 ही रुपया रहा, पर 100 गुलाब जामुन बिक गए, 100 जलेबी बिक गए। ऐसे ही अब जब वो घर पहुंचे, तो घर पहुंच के क्या है उनके पास में कुछ बचा नहीं। कुछ जब बचा नहीं तो बोले कितनी हमने कमाई करी, उनके पेरेंट्स ने पूछा, कह रहे बहुत कमाई तो नहीं कर पाए लेकिन 1 रुपया हमारा जो गया था वो वापस ले आए हम अपने साथ। और मतलब क्या कहते हैं ना, जितना लगाया था उतना हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आ गया। कह रहे लॉस हुआ तुमने गुलाब जामुन और जलेबी खराब कर दी, कह रहे वो पेट में गए ना लॉस का होता है। तो इस तरह से वो बातें कर रहे थे। तो ये कथा तो वैसे हंसी बताती है, लेकिन इस कथा से शिक्षा क्या है कि हम भी जीवन में ऐसे बिजनेस करते हैं, हाँ ये तेरी गलती ये मेरी गलती। जब हम किसी की गलतियां बताते हैं तो 1 रुपया उसकी जेब में फेंक देते हैं, फिर वो हमारी गलती बताता है तो फिर 1 रुपया हमारी जेब में, फिर 1 रुपया फिर 1 रुपया फिर 1 रुपया 1 रुपया। गुलाब जामुन जलेबी खाते हैं आनंद का, जब किसी की बुराई करते हैं बड़ा आनंद आता है ना, ये ओठ दिए भगवान ने, किसी को बोल दो ना बुरा बोला बड़ा मजा आता है, और कोई हमें बोल दे तो बड़ा दुख होता है। तो जब कोई बोले तो लॉस, जब कोई को बोलो तो प्रॉफिट। तो 1 रुपया देते हैं गालियां देके उसको बुरा बोलते हमारे को प्रॉफिट। तो ऐसे 1 रुपया लेन देन चलते चलते एक दिन जीवन का मेला समाप्त हो जाता है। और फिर जब हम भगवत धाम जाते हैं तो पूछते हैं क्या कमाया, तो बोलते हैं 1 रुपया बस। जो लेके गए थे भगवत धाम से लेकर यहाँ आए थे एक आत्मा, वही लेकर वापिस आ गए, आप जो शरीर देना दे दो। तो फिर क्या शरीर मिलेगा, जब 1 रुपया लेके आए हैं प्रॉफिट, तो इस मेहनत करनी चाहिए, लोगों को बेचना चाहिए, हरि नाम का प्रचार करना चाहिए, और सबसे पहले किसको प्रचार करना चाहिए, इसको अपनी आत्मा को। ये जो बंद हो गई है संसार में इस शरीर के अंदर, हम कहते हैं चेतन महाप्रभु भारत भूमि से जन्म ले ले भाग्यवान यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। तो परोपकार करने में तो सब लोग बड़े माहिर हैं हिंदुस्तान में, बड़े परोपकारी हैं, मटके दान करेंगे, पानी दान करेंगे, लड्डू दान करेंगे, अभी नवरात्र में रिक्शे पे जाम लगा रखे, कचौड़ियां दान कर रहे हैं रोड में, ये परोपकार नहीं है। सबसे बड़ा परोपकार है जो व्यक्ति 1 रुपया ये आत्मा अपने साथ लेके आया, इस आत्मा को भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार करना, भगवान का हरि नाम उसको प्रदान करना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। ये कब कर पाएंगे, पहले अपने ऊपर उपकार फिर परोपकार, पहले अपने ऊपर, पहले अपनी आत्मा पे तो करें, हरि नाम को प्रगाढ़ता से ले, उसके बाद दूसरों पर उपकार होता है। और जैसे एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां पर एयर हॉस्टेस आती है, कहती है दो द्वार इधर है, इमरजेंसी के दो द्वार इधर है, और जब हवा का प्रेशर रुक जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने आएगा, तो इंस्ट्रक्शन देती है पर कोई सुनता नहीं है, सब उसी को देख रहे होते हैं। तो सोचना ये चाहिए कि जो एयर हॉस्टेस जो है वो हमारे जीवन में क्या है, गुरु के रूप में है या फिर वैष्णव के रूप में है, वो आकर जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन आदेश उपदेश देते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सुनते में वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी गेट बताते हैं, कौन से इमरजेंसी गेट है, एक इस्कॉन का है, ये भी इस्कॉन का है, ये पीछे वाले की दोस्त, ये इमरजेंसी गेट है। और अगर हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा, जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा। ऑक्सीजन मास्क क्या है, आपके जीवन में सॉल्यूशन भगवान की कृपा, आपके जीवन में आएगी भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा आने के लिए बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, पहले अपना मास्क लगाइएगा फिर पड़ोसी की मदद करिएगा। ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि पहले अपने को हरिनाम स्थापित करें अपने हृदय में, फिर दूसरों को प्रचार करें। कई लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं, मैंने देखा ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में कोई डिवोटी जप माला में उंगली डाल रखी है, हरे कृष्ण बाट घूम के कर रहे, देखते कोई नया आदमी आया है ना तो अपना जप रोक देते हैं, फिर बोलते हैं आप जप करते हैं, नहीं नए आए हैं, आइए हम आपको माला देते हैं, फिर एक माला देते हैं, कहते हैं ध्यान पूर्वक जपेगा हरे कृष्ण, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, दूसरे का ऑक्सीजन मास्क लगाने में चलेंगे ना तो अपनी सांस भी जाएगी दूसरे की भी जाएगी। तो इसलिए प्रथम सीढ़ी है किसी के ऊपर भी कृपा करने की कि हमारे जीवन में जो ये बीज भक्ति का प्राप्त हुआ है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भागवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ये जो बीज मिल गया है ना भक्ति का, इसको ढंग से आरोपित करिए अपने जीवन में, इसको ऐसे ही बेकार में जाने दीजिए। कई कई जन्मों की सुकृतियां जब प्राप्त होती है तब हमारे जीवन में किसी वैष्णव का प्रवेश होता है, और जब वैष्णव का प्रवेश हो तो उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अभी बीज एक बीज है, उसके अंदर एक पेड़ होता है, देखा है आपने, पेड़ में बीज नहीं होता, बीज में पेड़ होता है, कैसे निकल आता है, उसमें फल भी होते हैं, उसमें शाखाएं भी होती है, पत्ते भी होते हैं, किसमें, बीज में। तो ब्रह्मांड में भी कौन भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज मिल गया। अरे बीज में कैसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी, तो वो जो ये भक्ति का बीज मिला है ना, इसी के अंदर से शास्त्र निकलते हैं भागवतम, इसी में से निकलेगी भगवत गीता, इसी से निकलेगा सारा ज्ञान, इसी से निकलेगा वैष्णविज्म, इसी से निकलेगा ध्यान पूर्वक जप, बस इस बीज को संभाल के रखना है, फिर इससे पेड़ निकलेगा, फल निकलेंगे, रसीले रसीले फल निकलेंगे। और आपने बीज को ही कुचुड़ मुचुड़ करके डाल दिया मिट्टी में, पानी नहीं डाला तो बस वो बीज ना बढ़ेगा ना उसमें से एक पत्ता भी नहीं निकलेगा। आप देखिए कृष्ण रूपी भक्ति का बीज मिलने का मतलब क्या है, जैसे आज यहाँ पर जो नए लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र को सुना, तो ये बीज है भक्ति का। ब्रह्मांड में घूमने के बाद किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ये सुनने का मौका मिलता है, तो अगर मिल गया तो अब इस बीज को जपना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलना चाहिए, और फिर ये बीज आपके जीवन में सब कुछ प्रदान करेगा, आनंद। जो लोग बहुत पुराने हैं ना उनसे भी पूछिए, कई बार स्फूर्ति नहीं होती, आनंद का एहसास नहीं होता, कहते हैं बड़े परेशान है, क्यों, क्योंकि वो बीज अभी उन्होंने सिर्फ इतना जप किया है कि वो बीज एरेटिक रखा हुआ है, मरा भी नहीं है, जीवित भी नहीं हुआ है। जिस दिन उस बीज से एक कोपल भी बाहर निकल गई ना पत्ते की रस की, इतना आनंद आया ना, आदमी कहता है कुछ इतने खुश क्यों रहते हो, अरे कोपले फूट रही है अंदर तो मेरी, शाखाएं बन रही है, फल निकलने वाले हैं, और जिस दिन फल निकल गए ना रसीले, वाह, वो व्यक्ति जब बोलेगा तो लोग कहेंगे आप क्या बोलते हैं, जब वो व्यक्ति चलेगा क्या चलते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद चलते हैं बोलते हैं तो बस लोग उनके आनंद में, डांटते भी हैं तो लोग बोलते हैं वाह प्रभुपाद बोलते हैं रास्कल, खुश होते हैं, हम बोलते रास्कल तेरी तो लक्ष्मी है। तो इसलिए अभी जरूरी है कि अपने बीच पर काम करें बजाय इसके कि संसार को प्रचार करें, पहले आचार फिर प्रचार, तो हम ये जीवन में रखें। और कृपा, हाँ ये शब्द बोल मैं समाप्त करूंगा, जो कृपा आपने बोला ना कि ब्रह्मांड भ्रमित किसको ये कृपा मिलती है, तो कृपा का अर्थ हम ऐसी चर्चा करते हैं तो कुछ लोग कृपा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कृपा का मतलब है कर और पा, करने के बाद पाए वो कृपा है, एक्चुअली कृपा का मतलब है, एक आचार्य बताते हैं कृपा का मतलब है इंस्ट्रक्शन, आदेश, इंस्ट्रक्शन ये कृपा है। कई लोग सड़क पर घूम रहे होते हैं उनको तो कोई आदेश नहीं देता, इंस्ट्रक्शन नहीं देता, और यहाँ पर भी कोई नए भक्त आए उनको भी कोई आदेश नहीं देगा, लेकिन जो पुराने भक्त होते हैं जो किसी भक्त के साथ जुड़े होते हैं उनको वो आदेश देते हैं, आपका जप ठीक नहीं चल रहा है, आपकी मंगल आरती ठीक नहीं चल रही है, आप ना भागवतम सही से नहीं पढ़ रहे हो, आपका श्लोकोच्चारण ठीक नहीं है, तो वो आदेश किसको मिलते हैं, जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसको कृपा मिलती है। हमें कृपा कैसे मिल रही है, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, ये कृपा है। लोग बोलते हैं ना अब महाराज जी बाबा जी साधु जी स्वामी जी प्रभु जी कृपा करिए, तो कृपा का मतलब क्या है, वो कृपा करें तो वो आदेश देंगे, और वो आदेश दें तो कृपा कब फलीभूत होती है, फल कब बनता है, जब उस आदेश को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रॉब्लम ये है आप कृपा तो चाहते हैं लेकिन उसे अपनाना नहीं चाहते हैं, फ्री की कृपा चाहिए, बस हाथ लगा दो सिर्फ है, उससे कोई कृपा नहीं मिलती। कृपा मतलब कोई आपसे पूछे अगर कृपा करिए तो बोले ठीक है हरे कृष्णा को ध्यान पूर्वक जपिए, अगर वो जपेगा तो कृपा मिलेगी नहीं मेरे जीवन में, ये है कृपा इंस्ट्रक्शन। अर्जुन को कृपा कब मिली, जब उन्होंने क्या बोला पहले वो बोल रहे थे मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, ऐसी बातें कर रहा हूँ। भगवान ने कहा तुम कैसे पंडितापूर्ण बातें करते हो, ये छोड़ दो अर्जुन ये सारी चीजें। तब वो समझ गए कार्पण्य दोषम उत्पत्त स्वभाव। तब उन्होंने बोला मैं घबरा रहा हूँ। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, बोलते हैं शिष्यस्तथामी शाधि माम तुम प्रपन्नम, मैं शिष्य बनकर आपके ऑर्डर लेने को तैयार हूँ। तब गीता का ज्ञान घुसना शुरू हो जाएगा। परीक्षित महाराज को कृपा कैसे मिली, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के रूप में इंस्ट्रक्शन दिए, कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तन्य देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजे। अगर तुम कीर्तन करोगे तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे जीते जी भी और पुण्य शरीर छोड़ने के बाद भी। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये कृपा मिल रही है। अब हम जाते हैं और हमें कोई सेवा बोल देना अभी एक काम करो अब ये करो हरि नाम का जल खाए को मैं मंदिर चला गया ये मारा पकड़ा दी बाबा जी से। हाँ कृपा मिली है, उस कृपा को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आएगा और आप फिर समझ पाएंगे कि कृष्ण किस प्रकार से संसार के ब्रह्मांड नायक है जिसको ब्रह्मा जी स्थापित करने वाले हैं कि ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंदम विग्रहम अनादि राधे गोविंदम सर्व कारण सारे कारण के कारण है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं समाप्त है। क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न नहीं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व दो पिता की जय, पते पावन श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय, निताय निताय गो प्रेम नंदे। हाँ।